राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को जन्म जन्म मोह दीजियो। श्री वृंदावनवा राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है, सोते रो आधी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन नंदन, यशोदा नंदन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वन
राधा माधव कुंज बिहारी।
ना छोड़ो मझदार कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, जहां बिराजे
नटवर मनोहर भेर।
रंग भर सुंदर श्याम मेरे जीजी रंग भर सुंदर श्याम मेरे जीजी रंग भर ब्रिज की सब माला रूप रसाला करीबे हला नंद लाला लागी तन ज्वाला विपत विशाला दिन दयाला नंद लाला आए नहीं आला कृष्ण कृपाला बंसी वाला बनवारी हे नर सुखकारी मित्र मुरारी गए विदारी गिरधारी रे जीजे गए विदारी गिरधारी रे जीजे गए विदारी जय राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधे
जय राधा
गिरधारी राधा जय 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 गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय 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 प्रभुपाद 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 श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की श्री श्री गौर निताय की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नष्टकी श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 9 10 और 11 श्री मनुरुवाच येन चेतयते विश्वम् विश्वम् चेतयते नयम् यो जागर्ति शयानेऽस्मिन् नायं तं वेद वेदस आत्मवासमिदं विश्वं यत्किञ्चिज्जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य स्विद्धनम् यम पश्यति न पश्यन्तम् चक्षुर्यस्य नरिष्यति तं भूतनिलयं देवं सुपर्णमुपधावत। श्रीमनुवाच येन चेतयते विश्वं विश्वं चेतयते नयम् यो जागर्ति शयानेऽस्मिन् नायं तं वेद वेदस। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवमांश श्रीरूपं सग्रजातम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा फल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने प्रचोदिता जय न पुरा सरस्वती वितन्वता च ससतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुर्भूत किलास्यत समे ऋषीणा ऋषभ प्रसीदता भूर तेर महतमी यही मापुरो निर्मायशेते यदमुष्य पूरुष भुंतेर गुणानशो दशशोडशात्मक सोलंक श्रीष्ट भगवान वचांसि में। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति बुधवार इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रायः इस संसार में लोग माया के द्वारा दुखी है। संसार के सभी लोगों को माया नचाती है। माया कई रूप में अपना कई रूप धारण करती है और अनेक अनेक रूप लेकर संसार के लोगों को नचाते रहती है। ये माया स्वयं भी नाचती है और स्वयं के साथ साथ संसार के सभी लोगों को नचाती है। कभी पत्नी के रूप में पति को नचाती है, बालकों के रूप में पिता को नचाती है, समाज और संसार के रूप में व्यक्ति को नचाती है। सभी ओर से माया का प्रभाव और संसार के लोग भजन न करते हुए इस माया में फंस जाते हैं और माया के साथ साथ नाचने लगते हैं। माया नचाती है और नाचती है, इसलिए माया को नर्तकी कहा गया है। आपने सुना होगा यह शब्द नर्तकी का अर्थ होता है नाचने वाली, क्योंकि माया नाचती है और नचाती है इसलिए इसे नर्तकी कहा जाता है। और संसार के लोग माया के द्वारा नाचते 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 थकावट महसूस होती है। गुजराती में कहते हैं थाकी गयो, थाक लगता है, थक जाते हैं व्यक्ति। वास्तव में आज इस दुनिया में प्रायः लोग माया के चक्कर में फंसकर थक जाते हैं, जीवन से थक जाते हैं, अंत में आत्महत्या कर लेते हैं। तो जीवन में थाक है और माया के द्वारा, नर्तकी के द्वारा लोग नाच रहे हैं। यदि इस नर्तकी से बचना है और थाक को दूर करना है तो दो चीज करनी होगी। नर्तकी से यदि बचना है तो बिल्कुल उल्टा कर लीजिए, वह करना होगा। क्या होता है, क्या होता है? नर्तकी का उल्टा होता है कीर्तन। यदि माया के नाच से मुक्त होना है तो कीर्तन करना होगा, और यदि थाक से मुक्त होना है तो उसका उल्टा कर लीजिए। थकावट को दूर करना है तो कथा सुननी होगी। माया से बचने के लिए और संसार के थाक से मुक्त होने के लिए कीर्तन करना है और भगवान की कथा सुननी है। हरे कृष्णा हम सबका परम सौभाग्य है कि ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की कृपा से प्रति बुधवार को यहाँ पर थाक को दूर करने वाली कथा सुन रहे हैं और प्रतिदिन इस माया, जो नाचने वाली माया नर्तकी से बचने के लिए हम कीर्तन करते हैं। तो आइए इस प्रभुपाद जी की विशेष अनुकंपा का, विशेष कृपा का लाभ उठाएं, जीवन का कुछ क्षण भगवान की कथा में हम व्यतीत करें। भागवत कथा, भागवत जो अमल पुराण है जिसमें किसी भी प्रकार का मल नहीं है, ऐसे महापुराण के अष्टम स्कंद के प्रथम अध्याय की कथा हम सब लोग सुन रहे हैं। पिछले बुधवार को हम लोगों ने सुना मनु महाराज और शत्रुपा जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मनु और शत्रुपा दोनों पति पत्नी भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने राजमहल को छोड़कर वन में निकल गए और जंगल में जाकर उन्होंने तपस्या प्रारंभ की। कैसी तपस्या? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सुनंदायाम वर्ष शतम पदे केन भुवम स्पृशन। अपने एक पैर पर खड़े रहकर, एक पैर के एक अंगूठे के ऊपर खड़े रहकर अपनी दृष्टि नभ की ओर करते हुए शतम वर्षम 100 वर्षों तक इन्होंने तपस्या प्रारंभ की। बहुत भीषण तपस्या है और तपस्या करते करते ये कोरी तपस्या नहीं कर रहे थे आज के लोगों की तरह। आज संसार के लोगों में एक ऐसा संप्रदाय है, एक ऐसा धर्म वो मानते हैं हम धार्मिक हैं, परंतु तपस्या कोरी तपस्या नहीं होनी चाहिए। तपस्या में भी भगवान का गुणानुवाद, भगवान का नाम, भगवान को प्रार्थना, भगवान को स्तुति होनी चाहिए, तब वह तपस्या पूर्ण मानी जाती है। कुछ लोग घर छोड़ देते हैं, बिना चप्पल के संसार में घूमते रहते हैं नंगे पांव, और पूरा जीवन भर घूमते रहते हैं और इस प्रकार से बिताते हैं, परंतु भगवान का नाम नहीं लेते हैं। भगवान का नाम नहीं लेना है, उनकी कथा नहीं सुननी है और केवल कोरी तपस्या करनी है। तो जड़ भरत जी कहते हैं, रहुगणेत तपसान याति। हे राजा रहुगण, तपस्या से भगवान नहीं मिलते, क्योंकि तपस्या तो बंदर भी करते हैं, तपस्या तो ये पेड़ और पौधे भी कर रहे हैं। कितने सालों से एक जगह पर खड़े हैं, ठंडी गर्मी कितनी कैसी भी ऋतु हो, एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। क्या उनमें जीव नहीं है? जीव है, उनमें भी एक आत्मा है और खड़े हैं, तो क्या उसे भगवान की प्राप्ति हो गई? रहु गणेत तपसान याति, केवल कोरी तपस्या से भगवान नहीं मिलते हैं। तपस्या होनी चाहिए, तपस्या भक्ति का एक अंग है, परंतु तपस्या ही भक्ति नहीं है। तपस्या के साथ साथ भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान को स्तुति और भगवान को प्रार्थना होनी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मनु महाराज तपस्या तो किए, परंतु तपस्या के साथ साथ बहुत सुंदर भगवान को स्तुति भी किए, प्रार्थना भी की। और मनु महाराज ने भगवान के प्रति क्या प्रार्थना की है, ये प्रार्थना सुखदेव गोस्वामी अब सुना रहे हैं। सबसे पहले मनु महाराज अपनी प्रार्थना में इस जगत में जो अपने पुत्र हैं, अपने पुत्र को उपदेश दे रहे हैं। वास्तव में इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, ये सारे मनुष्य मनु महाराज के पुत्र, प्रपुत्र, प्रपोत्र इत्यादि। क्योंकि संसार में जितने भी मनुष्य की संख्या है, जितने भी मनुष्य हैं, ये सारे मनुष्य मनु महाराज से आए हैं। यदि किसी को पूछा जाए आपके पिताजी कौन है, अच्छा उनके पिताजी कौन है, उनके पिताजी कौन है, तो अंत में ये मनु महाराज आएंगे। मनु महाराज से ही ये मनुष्य योनि बनी है। इसलिए इस मनुष्य को मानुज भी कहा जाता है और मनुष्य भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मनु महाराज से यह जन्म लिए हैं, मनु लगा हुआ है। संसार के लोग, आज के वैज्ञानिक कहते हैं और बच्चे लोग को पढ़ाया भी जाता है। मुझे याद है, मुझे 3री कक्षा में यह पढ़ाया गया था कि मनुष्य की उत्पत्ति बंदरों से हुई है। यह मनुष्य कैसे बना? बंदर से बना, और पूरी आकृति के साथ हिस्ट्री इतिहास में ये बताया जाता था। सबसे पहले एक बंदर, उनकी एक पूंछ और बड़े बड़े बाल, फिर वह बंदर थोड़ा थोड़ा 2 पांव पर चलने लगा, फिर दो पांव पर चलने लगा तो उसे थोड़ा ज्ञान आ गया, तो धीरे धीरे पूंछ भी निकल गई। कहां कैसे निकल गई ये तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं। और फिर धीरे धीरे सारे बाल निकल गए और फिर वह बंदर पैंट शर्ट पहनने लगा और वही बंदर हम लोग हैं। अर्थात दूसरे शब्द में यह कह रहे हैं कि हमारे बाप दादा बंदर थे। दूसरे शब्द में गाली दे रहे हैं कि हमारे पिताजी के पिताजी ये सब बंदर में से आए हैं। लेकिन ये सब मूर्ख भरी बातें हैं। जिसको शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, भागवत और गीता का जिसके पास अंधापन है, ज्ञान नहीं है, वो इस प्रकार से बोलते रहते हैं। वास्तव में आज अमेरिका में, विदेशों में इस सिद्धांत के ऊपर बैन लगाया गया है। विदेशों में यह सिद्धांत नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो लोग समझ गए कि एक छोटा सा बालक भी समझ सकता है कि बंदर कैसे मनुष्य बन सकता है। वो लोग समझ गए, परंतु इतना सांस्कृतिक देश जिस भारत में भागवत और गीता का ज्ञान प्रकट हुआ, भारत के लोग, भारत के समाज में आज भी स्कूल में वही पढ़ाया जाता है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। परंतु गीता और भागवत हमें सिखाता है कि वास्तव में यह मानुज जकारता है जन्म, और मान मनु कारता है मनु महाराज। जिसका जन्म मनु महाराज से हुआ उसे मानुज कहा जाता है, मनुष्य कहा जाता है। तो हम सब मनु महाराज के ही पुत्र प्रपोत्र इत्यादि हैं, और मनु महाराज हम सब के लिए बहुत सुंदर सिद्धांत, बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं उस उपदेश को। मनु महाराज, श्री मनु उवाच। मनु महाराज एक पांव पर खड़े हैं, तपस्या में खड़े हैं, और तपस्या करते करते मनु महाराज अपने मुख से यह श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं येन चेत यते विश्वम। मनु महाराज कहते हैं कि जिनसे यह विश्व चेतनी भूत हो जाता है, उस भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूं, उस भगवान की शरण लेनी चाहिए जिस भगवान से ये सारे विश्व में रहने वाले जीवों में, विश्व में रहने वाले जड़ और प्रकृति, जीवित चर अचर सब में चेतना आती है, उस भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। उस भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। बहुत सुंदर। सबसे पहली बात बताए, वास्तव में भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु से ही इस संसार में चेतना आई है। आप सब लोग कहेंगे चेतना क्या होती है? चेतना का अर्थ होता है मोमेंट। ये सब जो हिल रहा है, सब कुछ काम कर रहा है, इसे चेतना कहते हैं। वैसे तो ब्रह्मा जी के द्वारा यह सृष्टि का सर्जन हुआ। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकले, और ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान भगवान विष्णु ने दिया और कहा कि संसार का सर्जन करो। ब्रह्मा जी ने संसार का सर्जन किया, पृथ्वी का सर्जन किया, पृथ्वी में 84 लाख जीवों का सर्जन किया, और सभी जीवों में आत्माएं आ गई, अर्थात जीव आ गए, लेकिन फिर भी यह सृष्टि चलायमान नहीं हुई। ब्रह्मा जी ने सबके शरीर बना दिए और शरीर में आत्मा भी आ गई, लेकिन फिर भी वह शरीर चलायमान नहीं हुआ, चलने नहीं लगा। पेड़ पौधे इत्यादि ये सब कुछ ब्रह्मा जी ने बनाया और सब में आत्माएं आ गई, लेकिन फिर भी यह चलायमान नहीं हुआ, इसमें चेतना नहीं आई। तब ब्रह्मा जी भगवान को बुलाए, प्रभु आपके कहने पर सृष्टि का सर्जन किया और सभी जीव, सभी आत्माएं उसमें आ गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ चल नहीं रहा है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत सुंदर ये माइक सिस्टम बना दे, बहुत सुंदर माइक है, स्पीकर है, एम्पलीफायर है, वायर है, सब कुछ है, लेकिन इसमें फ्यूज ही नहीं है, तो करंट ही नहीं है, तो इतनी सुंदर सिस्टम है, क्या फायदा? ठीक उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने सब कुछ बनाया, परंतु उसमें चेतना जब नहीं आई, तब भगवान को बुलाया है। और भगवान श्री कृष्ण इस संसार के सभी जीवों में परमात्मा के रूप में जब प्रवेश किए, तब जाकर यह जीव चलने लगा, चलायमान हुआ। ये जगत, ये पृथ्वी, ये चराचर जगत, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जब भगवान प्रवेश किए तब ये सब कुछ चलने लगा। इसलिए मनु महाराज कहते हैं कि ये न चेत यते विश्वम, जिस भगवान की कृपा से ये पूरे विश्व ब्रह्मांड में चेतना आती है उस भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो वास्तव में हम सब में कभी कभी यह बुद्धि होती है, हम कभी कभी सोचते हैं कि वास्तव में यह विश्व ऑटोमेटिक चल रहा है, ये जो भी सूर्य चंद्र तारे ये जो भी हैं, ये स्वयं प्रकाशित हैं, ये उसमें से प्रकाश आ रहा है। परंतु देखा जाए तो ये सब कुछ, ये सब के पीछे भगवान श्री कृष्ण का हाथ है। भगवान श्री कृष्ण से शक्ति लेकर ये संसार के समस्त जीव, सूर्य चंद्र तारे इत्यादि सब कुछ चमकते हैं और सब कुछ चलते हैं। बाकी सूर्य में और ये पृथ्वी में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिससे इसमें से बहुत सारा उत्पादन हो और ये सब चले, भगवान की कृपा से चलता है। कभी कभी हम भ्रमित हो जाते हैं, कैसे, मैं आपको दृष्टांत देता हूं। जो लोग कार चलाते होंगे इस बात को जानते होंगे, रात को जब घर से निकलते हैं कार लेकर, तो रास्ते में जहां डिवाइडर होता है वहां पर रोड के ऊपर कुछ लाइट फिट की गई होती है वाहन को एक लाइन में चलने के लिए, और उस लाइट में से प्रकाश आता है। तो कुछ लोगों को लग सकता है कि इस रोड के अंदर इलेक्ट्रिक सिटी वाली लाइट फिट की गई है, इसलिए उसमें से प्रकाश आ रहा है। परंतु वास्तव में उसमें कोई प्रकाश नहीं है। हम जो कार लेकर जा रहे हैं उस कार की रोशनी उस लाइट के ऊपर पड़ती है और उसका रिफ्लेक्शन होकर वे प्रकाश के रूप में प्रकट होता है। तो हम कभी भ्रमित हो जाते हैं कि उसमें से यह प्रकाश आ रहा है, परंतु प्रकाश तो हमारी गाड़ी से ही जा रहा है। ठीक उसी प्रकार हमें लग सकता है कि ये उत्पादन, ये पेड़ पौधे पृथ्वी से निकल रहे हैं और चंद्रमा प्रकाश दे रहा है और इस संसार के लोग सब कुछ करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण से ही सारी शक्ति और सारा प्रकाश आ रहा है। जब तक भगवान श्री कृष्ण शक्ति हमें प्रदान न करे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। कहावत है ना कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। संसार में जो कुछ भी होता है भगवान की इच्छा से होता है, क्योंकि भगवान ही इस संसार के अंदर, इस संसार में चेतनी भूत है, व्याप्त है। तो आगे कहते हैं येन चेत यते विश्वम, जो भगवान इस संसार को चेतना देते हैं, और विश्वम चेत यते नयम, और यह विश्व भगवान एक है और एक होकर करोड़ों करोड़ों अरबों जीवों को चेतना देते हैं। देखिए मनु महाराज कितनी सुंदर बातें कर रहे हैं। येन चेत यते विश्वम, भगवान एक है और एक होकर करोड़ों करोड़ों लोगों को खाना पीना ये सब कुछ प्रदान करते हैं, परंतु ये करोड़ों अरबों लोग मिलकर भी एक पृथ्वी, वैसे 14 लोक, वैसे एक ब्रह्मांड हुआ, वैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड के जीव मिलकर भी उस भगवान को चेतना नहीं दे सकते। भगवान एक है और एक 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 होकर पूरे विश्व को चेतना देते हैं। मनु महाराज कहते हैं विश्वम चेत यते नयम, परंतु ये अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये विश्व मिलकर भगवान को चेतनीभूत नहीं कर सकते। भगवान एक है और एक होकर करोड़ों लोगों का घर चला रहे हैं, परंतु दुख की बात है कि करोड़ों लोग मिलकर भगवान का घर नहीं चला सकते, क्योंकि वास्तव में इस संसार में जो भी कुछ दे, इस संसार का व्यक्ति भगवान को क्या दे सकता है बताइए। हम लोग कभी कभी मन में अहंकार हो जाता है कि हम भगवान को ये दे रहे हैं। मनु महाराज जो पूरे ब्रह्मांड के राजा है वे कह रहे हैं कि पूरा विश्व मिलकर भी भगवान को कुछ नहीं दे सकता है, भगवान को कुछ नहीं दे सकता। और भगवान को देने की बात तो दूर रही, हम जीव जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल भगवान का ही खा रहे हैं, क्या देंगे भगवान को। इसलिए कवि कहते हैं दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, देने वाला केवल एक हमारा राम है, कृष्ण है, बाकी पूरी दुनिया भिखारी है। चाहे वह ऑफिस में बैठने वाला करोड़पति हो, चाहे वह धीरूभाई अंबानी हो, या उनके लड़के हो, या बिल गेट्स हो, भिखारी है सब लोग। करोड़ों रुपया होने के बाद भी वास्तव में धनी किसे कहा जाता है पता है? धनी किसे कहा जाता है? धनी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो धन को प्राप्त करने के लिए प्रयास न करे। धनी कहा जाता है जिसके पास धन है उसे धनी कहते हैं। तो जिसके पास धन आ जाता है वो दूसरा धन तो प्राप्त करने की कोशिश में नहीं होगा, क्योंकि उसके पास धन है। और यदि वह दूसरा धन प्राप्त करने की मेहनत में है तो वह धनी नहीं है। तो कितना भी बड़ी बड़े व्यक्ति को पकड़ लीजिए, धीरूभाई अंबानी या बिल गेट्स, आज भी वह 2400 घंटा धन कमाने के चक्कर में है। इसका अर्थ है कि वह धनी नहीं है। शास्त्र में एक कथा आती है। एक बार एक भिखारी 10-15 दिन से भूखा होगा बेचारा, तो भिखारी ने सोचा कि कुछ भीख नहीं मिल रही है तो चलो राजा के पास जाकर ही कुछ प्राप्त कर लूं। भिखारी सम्राट राजा के दरबार में गया और राजा के दरबार में जाकर देखा तो राजा मुसलमान राजा था। राजा नमाज पढ़ रहा था, पर नमाज तो पढ़ते हैं हाथ ऊपर करके, या अल्लाह। भिखारी आया और देखा कि राजा बैठे हैं, भिखारी वहां से वापस चला गया। राजा को पता चला, राजा की आंख अब उसका ध्यान चला गया होगा भिखारी के ऊपर। तो राजा ने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ ली, भिखारी जा रहा था तो राजा ने रोका, अरे रुको, कहां जा रहे हो? राजा पूरे ब्रह्मांड का राजा, चक्रवर्ती सम्राट था, कहा रुको कहां जा रहे हो, क्या कुछ चाहिए तुम्हें? भिखारी ने कहा कि हाँ मुझे चाहिए था परंतु अब नहीं चाहिए। राजा ने कहा क्यों, बोलो क्या चाहिए? भिखारी ने कहा कि क्या मांगू आपसे, मैं आया था यह सोचकर कि मुझे आपसे कुछ मिल जाएगा क्योंकि आप राजा हो, परंतु यहां आकर देखा तो मैंने देखा कि आप भी एक भिखारी हो। राजन मैं छोटा रास्ते का भिखारी हूं और आप इस राजा के इस दरबार के भिखारी हो, क्योंकि आप भी मांगते हो और मैं भी मांगता हूं। मैं इस संसार के लोगों से मांगता हूं और आप अल्लाह से मांगते हो, क्या फर्क है तुम में और हम में? चला गया भिखारी। सब लोग भगवान से ही मांग रहे हैं क्योंकि सब कुछ भगवान से आता है, भगवान की कृपा से आता है। तो हम भगवान को क्या दे सकते? यदि कोई मन में सोचे कि वास्तव में यह मैं कर रहा हूं, सूरदास जी कहते हैं वो तो सबसे बड़ा मूर्ख है। बहुत सुंदर सूरदास जी कहते हैं, करी गोपाल की सब होई, करी गोपाल की सब होई। सुदास जी कहते हैं कि भगवान जो देते हैं, भगवान जो करते हैं वही होता है, हमारा किया हुआ कुछ नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं कि ये मैं कर रहा हूं, मैं ऑफिस चला रहा हूं, मैं पति पत्नी को, पत्नी और बच्चों का मैं पालन पोषण कर रहा हूं। सुरदास जी कहते हैं कि जो अपनो पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सोई। कहते हैं जो अपना पुरुषार्थ मानता है, जो समझता है कि मैं ही मेहनत करता हूं और मैं मेहनत करके मैं मेरी पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करता हूं, मेरे मजदूरों का पालन पोषण करता हूं, तो सूरदास जी कहते हैं वो सबसे बड़ा झूठ है। साधन मंत्र जप उधम बल, साधन मंत्र जप उधम बल, ये सब डारो धोई, ये सब डारो धोई। उद्यम के बल पर मैं मेरी शक्ति से इस संसार का सब सामान जुटा रहा हूं। सुरदास जी कहते हैं ये जो मन में ये जितने भी विचार भरे हुए हैं उसे धो डालो। क्यों? जो कुछ लिखी राखी नंद नंदन, जो कुछ लिखी राखी नंद नंदन मेटी सके नहीं कोई, मेटी सके नहीं कोई। नंद नंदन नंद बाबा के पुत्र भगवान श्री कृष्ण जो चाहते हैं वही होकर रहता है, उसकी बात को कोई मिटा नहीं सकता है। भगवान जो चाहते हैं वही होता है और भगवान ही संसार में सबको सब कुछ देते हैं। दुख सुख लाभ अलाभ समुझी तुम, इस संसार में दुख सुख लाभ अलाभ ये सब कुछ छोड़कर कतई मरत हो रोई, संसार के दुख से दुखी होकर और जो नुकसान होता है उससे दुखी होकर कब तक रोते रहोगे। सरदास जी कहते हैं कि मेरे श्याम की शरण में चले जाओ ये सभी दुखों से मुक्त हो जाओगे। क्यों? क्योंकि संसार में देने वाला केवल मेरा श्याम है, मेरा कृष्ण है। कृष्ण से ही यह विश्व का भरण पोषण होता है, इसलिए भगवान का एक नाम है विश्वंभर। अंबर का अर्थ होता है भरण पोषण करने वाला, जो पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं उसे विश्वंभर कहा जाता है। तो भगवान ही संसार में सबको सब कुछ देते हैं, और इसको नेगेटिव रूप में देखा जाए तो हम भगवान को क्या दे सकते हैं, परंतु फिर भी हम भगवान को भगवान की ही चीज लौटाते हैं तो भगवान समझते हैं कि ये ईमानदार व्यक्ति है, कम से कम मेरे सामने तो देख रहा है। भगवान जी भगवान की वस्तु ही हमें भगवान को देनी है, और इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आगे मनु महाराज कहते हैं, अब तक कह दिया येन चेत यते विश्वम, विश्वम चेत यते नयम। भगवान श्री कृष्ण से ही यह विश्व चलता है और यह सारा विश्व मिलकर भगवान को नहीं चला सकते। आगे कहते हैं, यो जागति शयाने, इस संसार के लोग यदि सो भी जाते हैं परंतु भगवान कभी नहीं सोते हैं। कुछ लोग सोचते होंगे कि हम जब सो जाते हैं तो भगवान भी सो जा, गवर्नमेंट भी सो जाती होगी, परंतु ऐसा नहीं है। अर्थात सोने का अर्थ यह है कि भगवान इस संसार में सभी लोगों के साक्षी हैं। ऐसा नहीं है कि हम सो जाते हैं तो भगवान भी सो जाते हैं, और रात को भगवान देखते नहीं है कौन कितना काला काम कर रहा है, पाप कर रहा है। 24 घंटा भगवान सभी व्यक्ति को देख रहे हैं, सभी व्यक्ति के भगवान साक्षी हैं। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी, निवासम शरणम स्वर, भगवान सबके साक्षी हैं। और इसका दूसरा अर्थ यह है कि यदि कोई भक्त है तो भक्त यदि सोता है, यत जो जागति शयानेस्मिन, यदि भक्त सोता है तो भगवान सो नहीं जाते हैं, उस भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान उसके आजू बाजू में जागते रहते हैं कि मेरे भक्त का कोई बाल भी बाका न कर सके, भगवान पहरा देते हैं। बहुत शास्त्र में बहुत दृष्टांत है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र की भूमि में महाभारत के युद्ध में अर्जुन पूरा दिन युद्ध करके थक जाते थे तो अपने शिविर में जाकर आराम से खर्राटे लेकर सोते रहते थे, लेकिन उस वक्त कृष्ण क्या करते थे, महाभारत में वर्णन है कि अर्जुन पांडव सब लोग सो जाते थे परंतु उस वक्त कृष्ण उस पांडवों की रक्षा करने के लिए वहां पर देखभाल करते थे, जागते रहते थे। यो जागति, घोड़े को पानी पिलाना, घोड़े को भोजन देना, जिस घोड़े को सुबह चलाना है, भगवान यह काम करते हैं। यद्यपि अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ है, जिसके एक इशारे से ब्रह्मांड चलते हैं, ब्रह्मांड गिर जाते हैं, वह भगवान अपने भक्त का दास बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त जो है भगवान को अपनी प्रेम से भक्ति से वश में कर लेते हैं, और भगवान अपने भक्त के वश में इतने हो जाते हैं कि वे अपना नियम भी बदल देते हैं। भगवान का नियम है कि किसी की नौकरी न करना, किसी की सेवा कर न करना, क्योंकि वह मालिक है, भोगता है। भगवान का अर्थ ही है भोगता। भोगने वाला एक नौकर बन गया, क्यों? क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। भगवान अपना नियम बदल देते हैं भक्त का प्रेम देखकर। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान चले चल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान चला चला जाए, परंतु भक्त का मान कभी टलना नहीं चाहिए। नमे भक्ता प्रणश्यति। वे दास बन जाते हैं, सेवक नौकर बन जाते हैं। भगवान को यह नहीं पड़ी है कि लोग कल मुझे फिर भगवान नहीं मानेंगे, सेवक मानेंगे। भगवान को यह नहीं पड़ी है, भगवान को यह पड़ी है कि मेरे भक्त का यश बढ़ना चाहिए। तो हम जब सो जाते हैं तब भी भगवान सोते नहीं है, यो जागृति, भगवान जागते रहते हैं और जागते हुए पहरा देते हैं, हम सबकी रक्षा करते हैं। और मनु महाराज कहते हैं न यम तम वेद वेद सा। और हम सब मिलकर उस भगवान के बारे में नहीं जान सकते हैं। इस संसार में सभी जीव मिलकर न अयम तम वेद, हम सब मिलकर वेद का अर्थ है जानना। सब लोग इस संसार के सभी लोग मिलकर भी उस एक भगवान के बारे में नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। गीता में भगवान कहते हैं वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अर्जुन माम तु वेद न कश्चन, इस संसार के लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं, न कश्चन कोई भी व्यक्ति, परंतु वेदा अहम मैं सब कुछ जानता हूं। समतीतानि सब लोगों के बारे में, सब लोग अर्थात कितने लोग इस संसार में है, मनुष्य की संख्या ही अरबों में है और मनुष्य से लाखों गुना ज्यादा दूसरे पशु पक्षी कीट इत्यादि है। ये केवल एक ब्रह्मांड में, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीवों के बारे में भगवान तम वेद सब कुछ जानते हैं। और केवल वर्तमान के बारे में नहीं, भविष्याणि च भूतानि, भविष्य और भूतकाल और वर्तमान तीनों कालों के बारे में, सभी जीवों के बारे में भगवान जानते हैं। परंतु दुख की बात, मनु महाराज कहते हैं कि न वेद, परंतु हम करोड़ों करोड़ों जीव मिलकर भी उस एक भगवान के बारे में नहीं जान सकते। बहुत बड़ा आश्चर्य है। ऐसे परमात्मा को, ऐसे भगवान को, जो भगवान इस संसार को चेतना देते हैं और यह संसार मिलकर भी जिस भगवान को चेतना नहीं दे सकते हैं, जो भगवान इस संसार में सोने वाले व्यक्ति व्यक्ति सोते हैं परंतु भगवान जागते रहते हैं, और जो भगवान इस संसार के सभी लोगों के बारे में जानते हैं परंतु सब लोग मिलकर भी जिस भगवान के बारे में नहीं जान सकते हैं, उस भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। हरे कृष्णा हरे। अब मनु महाराज आगे कहते हैं, अब भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इदम विश्वम जगत्याम, कहते हैं कि आत्मवास्य इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत। उन परमात्मा से ही, उन भगवान से ही यह संसार व्याप्त है, अर्थात भगवान इस संसार की सभी वस्तुओं में है, सभी जगह पर, सभी सभी जीवों के हृदय में भगवान है, सभी चर अचर निर्जीव जीवित सभी वस्तु में भगवान उपस्थित है, व्याप्त है। आत्मा वास्यम इदम विश्वम, आत्मा का अर्थ शास्त्र में बहुत होता है, यहां पर आत्मा का अर्थ है परमात्मा। परमात्मा इदम विश्वम, यह विश्व में सभी जगह पर व्याप्त है, सभी जगह पर उपस्थित है। और इस संसार के जो बड़े बड़े लोग हैं अर्थात बड़े बड़े भक्त हैं, वे इस भगवान का दर्शन करते हैं। हो सकता है कि हम उस भगवान को नहीं देख सकते हैं इस भौतिक इंद्रियों से। भागवत में आया है कि जो शुद्ध भक्त हैं वे इस संसार में सभी जीवों में सभी जगह पर भगवान का दर्शन करते हैं, परंतु शुद्ध भक्त। संसार के कुछ लोग कहते हैं कि हम भगवान को नहीं देखते हैं इसलिए भगवान को नहीं मानते हैं। तो भगवान नहीं देखते, नहीं भगवान देखने में नहीं आ रहे तो भगवान नहीं है। हो सकता है कि हम उस भगवान को नहीं देख सकते हैं और कोई देख सकते हैं। शास्त्र में आया है जो शुद्ध भक्त हैं वे भगवान को सभी जगह पर देखते हैं। भागवत में कथा है महाराज रंती देव, महाराज रंती देव को कोई भी व्यक्ति मिलता था तो उस व्यक्ति में वो भगवान का दर्शन करते थे। इसका अर्थ यह नहीं कि वे सबको भगवान मानते थे, ऐसा नहीं है, परंतु किसी भी व्यक्ति में परमात्मा उपस्थित है तो उस परमात्मा का पहले दर्शन करते थे। हम भी जब कोई भक्त मिलता है तो उसे दंडवत प्रणाम करते हैं। चेतना क्या होनी चाहिए? उस भक्त में कोई ऐसी शक्ति नहीं है, उस भक्त के उस जड़ शरीर में जो परमात्मा है उस परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। तो जो बड़े बड़े भक्त हैं रंती देव जैसे, वह भगवान को का सभी जीवों में सभी जगह पर दर्शन करते हैं। उनकी कथा आती है 48 दिन कर दिन तक राजा रंती देव ने उपवास किया था निर्जला। हमने एक दिन किया था, सबको अनुभव होगा वैसा। 48 दिन तक उपवास किया था और 48 दिन के बाद जब वह पारण करने बैठे, तीन अपनी पत्नी बच्चे और स्वयं, ये तीनों जन 48 दिन उपवास रखे थे। पारण करने बैठे तो तीन प्लेट भोजन करने के लिए रखी गई, आसन के ऊपर बैठ गए। लेकिन जब आसन के ऊपर बैठे तो एक ब्राह्मण आया। रंती देव ने उस ब्राह्मण में भगवान का दर्शन किया। ब्राह्मण ने कहा कि मैं बहुत भूखा हूं, मुझे भोजन चाहिए। रंती देव ने अपना पूरा प्लेट पूरा थाली जो था ब्राह्मण को दे दिया। रंती देव ने सोचा ठीक है, भोजन नहीं मिला तो पानी पीकर चला लेते हैं। रंती देव जो पानी पीने गए तो उस वक्त एक चांडाल आया और कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, कितने दिनों से मैं प्यासा हूं, मुझे पानी चाहिए। रंती देव के पास केवल एक ग्लास पानी बचा था, वो पानी भी दे दिया उस चांडाल को। जब रंती देव का यह त्याग यह समर्पण देखा भगवान ने, भगवान विष्णु प्रकट हो गए, इंद्र प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि रंती देव वास्तव में तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति पूर्ण है, तुम ऐसा कार्य कैसे कर सके। रंती देव ने कहा प्रभु मैं सच सच आपको बताऊं, प्रभु मैं उस ब्राह्मण में ब्राह्मण का दर्शन नहीं किया, उस ब्राह्मण में मैंने आपका दर्शन किया, भगवान के समान है। और हृदय से कहता हूं प्रभु उस ब्राह्मण को मैं भोजन कराकर, उस ब्राह्मण को भोजन करता हुआ देखकर मेरा पेट भर गया। धन्य है रंती देव, भगवान कहने लगे। प्रभु भगवान विष्णु ने कहा रंती देव मांगो जो मांगना है, जो चाहिए वो मांग लो। अच्छा प्रभु आप मुझे जो चाहिए वो दोगे? रंती देव ने मांगा है। रंती देव ने कहा प्रभु यदि आपको देना ही है तो मुझे इस संसार में सभी जीवों के अंदर वास दे दो, मैं एक एक ही समय में संसार के सभी लोगों के हृदय में रहूं, ऐसी शक्ति मुझे दो। भगवान ने कहा क्यों, ऐसी शक्ति क्यों चाहिए? रंती देव ने कहा कि सभी जीवों के हृदय में रहकर मैं चाहता हूं कि सबका दुख मैं अकेला भोगतू और सब लोग केवल सुख ही भोगते। रंती देव का यह प्रार्थना है भगवान के प्रति। क्यों? क्योंकि रंती देव सब लोगों के जीव में भगवान का दर्शन करते, अर्थात भगवान सब जगह पर हैं, परंतु उसे एक भक्त ही देख सकता है। तो कहते हैं आत्मवास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत याम जगत, और आगे कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजिता। यह संसार भगवान से बना है, यह संसार भगवान का है, इसलिए इस संसार की वस्तु को त्याग कर भोगतना चाहिए। तेन इस संसार को त्यक्तेन त्याग कर भुंजिता भोग करो। ऐसा ही एक श्लोक उपनिषद में भी है, लेकिन उसमें ईशावासी इदम सर्वम, इसमें आत्मावासी। तो कहते हैं कि यह संसार क्योंकि भगवान से निकला हुआ है, यह संसार भगवान का है, इसलिए सबसे पहले इस संसार में जो भी वस्तु है उसे त्याग देना चाहिए, तेन त्यक्तेन, और फिर भुंजिता फिर भोगना चाहिए। ये जब मैं सुना तो मैं सोच रहा था ये कैसे हो सकता है। मान लीजिए आपको एक महीने मेहनत करने के बाद आपको पगार मिला 5,000 रुपया, और कहते हैं तेन उस 5,000 को त्यक्ते न त्याग दो, दे दो किसी को और फिर भोगो, फिर बचेगा तो भोगोगे ना, इसका अर्थ क्या होता है? तेन त्यक्ते न भुंजिता। आचार्यगण इसके बहुत सारे अर्थ किए हैं, लेकिन हमें जो अर्थ को समझना है वो दो अर्थ में आपको कहूं। तेन त्यक्ते न भुंजिता, मान लीजिए किसी ने किसी स्त्री के साथ विवाह किया है, भगवान ने कहा कि ये सब मेरी संपत्ति है, संसार में जो भी है सब मेरे से आए हैं इसलिए मेरे हैं, तो क्या पत्नी को तेन त्यक्तेन त्याग देना चाहिए और फिर भूंजी था फिर भोग करो? फिर उसके साथ रहो, इसका अर्थ क्या होता है? तेन त्यक्तेन भुंजिता का अर्थ होता है कि तेन त्यक्तेन त्यागना है, किसको त्याग कर किसको देना है? भगवान को देना है, अर्थात उसे भगवान की भक्ति देनी है। पत्नी और पुत्र को ले लीजिए, मान लीजिए पत्नी और पुत्र को तेन त्यक्तेन कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले पत्नी और पुत्र को भक्ति दीजिए, और पत्नी और पुत्र को भक्ति देने के बाद उसकी सेवा कीजिए, तो इस संसार में आप कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। और यदि उसको त्याग करके उसको भक्ति में न लगाकर उसकी सेवा करते हो तो कर्म बंधन में ऐसे फंसते जाओगे, ऐसे फंसते जाओगे जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं रेशम का कीड़ा। त्यजेत कोशस्तु दिवेह मान कर्माणि लोभान अनुतृप्त काम, जैसे रेशम का कीड़ा अपने मुख से लार ग्रंथि निकालता है और अपना घर बनाता है, अपने आजू बाजू में ऐसा घर बनाता है, ऐसा घर बनाते हैं, बनाते 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 चारों ओर घर बन जाता है और एक दिन अपने ही बनाए हुए घर में फंस जाता है, और फिर वह निकलने का बहुत प्रयास करता है, तड़पता है, फड़फड़ाता है, परंतु अपने ही घर में तड़प करके मर जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि अपने पत्नी पुत्र को और धन को भजन में न लगाया जाए, भक्ति न दिया जाए, तो अपने ही बनाई हुई घर गृहस्थी में फंसकर मर जाएंगे। इसलिए ईशावास्य इदम सर्वम आत्मा वास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत त्यक्ता त्यक्तेन भुंजिता, उसे त्याग कर भोग करना चाहिए। इसका अर्थ है सबसे पहले अपनी पत्नी और बच्चों को प्रवचनों में लाना चाहिए, और प्रवचनों में लाकर फिर घर पे जाकर उसे कुछ जो भी सेवा करानी है और उसकी सेवा करनी है यह करनी चाहिए। कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि प्रवचनों में जाते हैं तो पत्नी को साथ में लेकर नहीं जाना चाहिए, पुत्र को साथ में लेकर नहीं जाना चाहिए। भागवत कहता है, उपनिषद कहती है, आचार्य गण कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजिता, कि सबसे पहले उसे भजन में लगाओ और फिर उसके साथ जो भी व्यवहार करना है करो। परंतु मूर्ख लोग इसे दूसरी तरह से ले लेते हैं, तेन त्यक्तेन भुंजिता, उसे घर में ही त्याग कर भजन करने लगो। ऐसा नहीं है, पहले भजन में लगाओ फिर उसके साथ भोग करो। और इसका दूसरा अर्थ है कि तेन त्यक्तेन, सबसे पहले हमारे पास जो भी चीज आती है वे भगवान को अर्पण करनी चाहिए। यदि उस चीज को हम भगवान को अर्पण नहीं करते हैं तो नारद जी कहते हैं कि हम बहुत बड़े चोर हैं। यावत भ्रेत जठरम तावत स्वस्थम ही देही नाम अधिकम यो अभिजेत सस्तेनो दंड मरहति। भगवान ने हमारे लिए जितना दिया है हमें उतना ही भोग करना चाहिए, और वह भी भगवान को अर्पण करके। और यदि भगवान को अर्पण करके हमने उसका भोग नहीं किया तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि वह चोर है और वह तो यमराज का डंडा जरूर खाएगा। हम लोग मानते हैं ना, ये मेरा घर है, ये मेरा धन है, मेरी पत्नी है। प्रभुपाद जी एक दृष्टांत देते हैं कि एक व्यक्ति था और उसको अपने घर पर एक फर्नीचर बनाना था, एक बहुत सुंदर शोकेस बनाना था। तो रेडीमेड लेते हैं तो अच्छा नहीं आता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। तो उन्होंने सोचा कि किसी मिस्त्री को घर पे बुलाऊंगा और अच्छा अच्छा उसको मटेरियल लेकर दूंगा और उसे बना लेता हूं। मिस्त्री को घर पर बुलाया, मिस्त्री ने कहा कि यदि आपको शोकेस बनाना है तो इतनी चीज आपको दुकान से लानी होगी और इतना मेरा खर्चा होगा। इसने कहा ठीक है। मालिक व सेठ ने दुकान से वह सारा मटेरियल, लकड़ा, स्क्रू, जो भी लगता है लाकर मिस्त्री को दे दिया। मिस्त्र ने कहा 10 दिन के बाद, 10 दिन में आपके घर पर यहाँ पर काम करूंगा, 10वें दिन आपको मैं पूरा बनाकर दे दूंगा। मिस्त्री ने काम शुरू किया। वह सेठ तो सुबह घर से निकल जाते थे, शाम को घर पर आते थे। मिस्त्री सुबह से लेकर शाम तक काम करता था। एक दिन, दो दिन, 10वां दिन जब हुआ और सेठ जब अपनी ऑफिस से घर पर आए तो मिस्त्री उस कबाड़ को लेकर घर से बाहर निकल रहा था। सेठ ने कहा जा रहे हो कबाड़ को लेकर? मिस्त्री ने कहा मैं लेकर मेरे घर पर जा रहा हूं। सेठ ने कहा क्यों? मिस्त्री ने कहा मेरा है इसलिए। अरे भाई ये तो मेरा है। मिस्त्री ने कहा मैंने बनाया है इसलिए मेरा है। अब आप ही बताओ वह कबाड़ किसका है, वह शोकेस किसका है, सेठ का है कि मिस्त्री का है? बोलो जोर से बोलो, किसका है? सेठ का है। क्यों? वह सारा सामान, लकड़ा, स्क्रू, सब कुछ वह सेठ ने लाकर दिया था। मिस्त्री ने तो केवल वहां खिल्ली ठोका और वहां मारा और कहने लगा मेरा। मूल चीज वह सेठ की थी, इसलिए वह सोके सेठ का है। ठीक उसी प्रकार भक्तों, हम जो धन प्राप्त कर रहे हैं, हमारे पास जो गाड़ी, बंगला, जो भी संपत्ति है, ये सब कुछ भगवान से निकली हुई है। हमारे शरीर से हम एक ईंट भी निकाले हैं, ये सब कुछ भगवान का है। और यहाँ की चीज यहाँ करके, यहाँ का डायमंड यहाँ बेचकर, यहाँ की दलाली यहाँ करके, यहाँ का हीरा यहाँ घिस कर, जब हमें धन मिल जाता है तो हम सोचते हैं कि यह हमारा है। जैसे वह मिस्त्री दो तीन खिला ठोकर कहने लगा कि ये मेरा है, वैसे हम दो तीन हीरा यहाँ घिस कर हम कह देते कि ये सब कुछ मेरा है। क्या हमारा है? ये सब कुछ भगवान से निकला है, इसलिए सब भगवान का है। तो भगवान कहते हैं कि ये सब कुछ मुझे दे दो, ऐसा नहीं कह रहे हैं। भगवान कितने कृपालु हैं, आप कल्पना कीजिए। भगवान कहते हैं कि भाई आप ही रखो, परंतु दिखाओ तो सही कि मेरे पास इतना है। भगवान कहते हैं मुझे खाना है तो भोग लगा कर खाओ, जो भी भोगना है मुझे अर्पण करके करो। भगवान वस्तु नहीं चाहते हैं, भगवान भाव चाहते हैं कि व्यक्ति का कितना भाव है। भगवान आप मान लीजिए 5,000 रुपये महीने में कमाए हो और कमाकर भगवान के मंदिर में रख दिए, प्रार्थना कीजिए प्रभु मैं इतना कमाया हूं, मैं आपको अर्पण कर रहा हूं, क्या एक नोट कम हो जाएगी 5 मिनट के बाद? उतने के उतने ही रहेंगे, परंतु भगवान यह मान लेंगे कि नहीं, ये लाकर सबसे पहले मुझे रखा है मेरे चरणों में। भगवान यह समझेंगे नहीं, ये अच्छा व्यक्ति। यदि आप बहुत सुंदर भोग खाना बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, तो क्या भगवान 4-5 रोटी खा जाएंगे? हाँ, भगवान द्वापर युग तक तो खा जाते थे, परंतु भगवान ने सोचा कि कलयुग में इतने लोभी लोग हैं, यदि खाने लगा तो भोग लगाना बंद कर देंगे, लोग चढ़ाएंगे नहीं भोग मेरे को, इसलिए भगवान ने वह भी बंद कर दिया। भगवान केवल आंखों से, दृष्टि से खा लेते, और अंगानी से सकल इंद्रिय वृत्ति मंती, भगवान की समस्त इंद्रिय सभी काम करती है। तो तेन त्यक्तेन भुंजिता, सबसे पहले वह भगवान को, इस संसार की सभी चीज भगवान को अर्पण करनी चाहिए। मा ग्रीत कस्य स्विद्धम धनम, दूसरे की संपत्ति के ऊपर नजर नहीं डालनी चाहिए। मा ग्रीत, ग्रीत का अर्थ होता है आकांक्षा। जैसे गीत, गीत जो होता है वह केवल देखते रहता है कहां पर मेरा शिकार है, कहां पर शिकार है। वैसे ही संसार के लोग अपेक्षा करते रहते हैं, ये कमा लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा। जो कोटा हमारे जीवन में मिला है उस कोटे को ही भोगतना चाहिए। दूसरे के कोटे को यदि भोगतने लगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। नारद मुनि कहते हैं कि वे तो यमराज के बहुत दंडे खाएगा, दूसरे की संपत्ति को यदि कोई यूज कर दिया। और इस संसार में जो दुख है, इस संसार में जो लोग गरीबी भोगत रहे हैं, इसी के कारण भगवान ने सभी जीवों के लिए बहुत सुंदर तरीके से धन इत्यादि सबकी व्यवस्था कर दी है। परंतु समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीबों का शोषण करते हैं और सब गरीबों का धन अपने पास रख लिए, गरीबों को खाने के वांदे, और वे स्वयं भी नहीं भोगत सकते क्योंकि डायबिटीज है। किसी के पास करोड़ों रुपया हो तो खा खा कर 4-5 रोटी खाएगा, 50 तो नहीं खाएगा। वे धन अपने बैंक में रखेंगे और उनके पुत्र बियर बार में इत्यादि उड़ा देंगे और यहाँ पर जो गरीब हैं वह भूखे मरेंगे। भगवान ने सबके लिए बहुत बराबरी में बांटा है, परंतु हम उसे ठीक से नहीं ले रहे हैं, दूसरे का ले लेते हैं, इसलिए दूसरे लोग बेचारे भूखे मरते हैं। तो मां गृध, दूसरे की संपत्ति के ऊपर नजर मत डालना, नहीं तो यमराज के डंडे मिलेंगे। दूसरे की संपत्ति के ऊपर वही नजर डालता है जो संतोषी नहीं है, जिसके हृदय में असंतोष है, बहुत कुछ मिल जाने के बाद भी असंतोष है, वे दूसरे की संपत्ति के ऊपर नजर डालते हैं। लेकिन यदि कोई झोपड़ी में भी रह रहा है, उसके पास संतोष नामक धन है, तो वे उस झोपड़ी में रहकर भी खुश होगा, आनंदित होगा। और यदि कोई करोड़पति, अरबपति है, एसी में बैठा है, परंतु ऐसी के बीच में बैठकर भी यदि असंतोष है तो उसका हृदय जलता रहता है, जलता रहे। इसलिए कवि ने बहुत सुंदर कहा है कि हई धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धूरी समान। किसी के पास कितना भी धन क्यों न हो, परंतु जब संतोष धन आ जाता है, संतोष नामक धन आ जाता है, तो इस संसार का समस्त धन मट्टी के समान लगता है। तो संतोष रखते हुए दूसरे की संपत्ति के ऊपर हमें नजर नहीं डालनी चाहिए। और भी मनु महाराज बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन समय हो चुका है। अगले बुधवार को बहुत सुंदर सुंदर सिद्धांत आएंगे, तो इसका श्रवण अगले बुधवार को करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।